यस्य स्वरूपं कवयो विपश्यतो गुणेषु दारुष्विवजात वेदसं मथ्नन्ति मथ्ना मनसा दिदृक्षवो गूढं क्रियार्थैर्नमैरितात्मने। प्रभु को अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: ऋषि तथा मुनि काठ में छिपी अग्नि को अरणि के द्वारा उत्पन्न कर सकने में समर्थ हैं। हे प्रभो, ऐसे व्यक्ति आपको प्रत्येक वस्तु में, यहां तक कि अपने शरीर में भी देखने का प्रयास करते हैं। मानसिक या भौतिक क्रियाओं जैसी अप्रत्यक्ष विधियों से आपको नहीं समझा जा सकता। आप स्वतः प्रकट होने वाले हैं। अतः जब आप देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति सर्वतोभावेन आपकी खोज में संलग्न है, तभी आप अपने को प्रकट करते हैं। अतः मैं आपको प्रणाम करता हूं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा: क्रियार्थ ही शब्द का अर्थ है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठानों द्वारा। विपश्चितः शब्द की व्याख्या तैतरीय उपनिषद में इस प्रकार दी गई है: सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमान सोष्णुते सर्वान कामान यह ब्राह्मणा विपश्चितेति। जैसा कि श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मांतरों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष मुझे सब कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। जब मनुष्य को यह बोध हो जाता है कि भगवान सबके हृदय में विद्यमान है और जो भगवान को कण कण में उपस्थित देखता है, तो वह पूर्ण ज्ञानी होता है। जात वेद शब्द का तात्पर्य है वह अग्नि जो काष्ठ के रगड़ने से उत्पन्न होती है। वैदिक युग में ऋषियों द्वारा काष्ठ से अग्नि उत्पन्न की जाती थी। जात वेद का अर्थ जठर अग्नि भी होता है, जो भोजन को पचाने वाली और भूख उत्पन्न करने वाली है। गूढ़ शब्द की विवेचना श्वेताश्वतर उपनिषद में की गई है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः। वैदिक मंत्रों के जाप से ही शिव भगवान को जाना जा सकता है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा यह सर्वव्यापी है और प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित है। कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास यह जीवात्मा के सभी व्यापारों का साक्षी है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्री भगवान साक्षी होने के साथ साथ जीवित शक्ति हैं, तो भी वह समस्त भौतिक गुणों में दिव्य हैं। अनुवाद दोहराइएगा: हरे कृष्णा। तो इस 18वें अध्याय में हम ये सुन रहे हैं कि जम्बू द्वीप के अलग अलग वर्षों के निवासी किस तरह भगवान की स्तुति में लगे हुए हैं। अब उत्तर कुरु वर्ष, इस वर्ष के निवासी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इस लोक में भगवान वराहदेव के रूप में विराजमान है। उत्तर कुरु वर्ष में जम्बूद्वीप के अलग अलग वर्षों में भगवान विभिन्न रूपों में विराजे हैं और वहां पर भक्त अपने अपने भावना से भगवान को पूजते हैं। भगवान के अनंत रूप हैं। एक भगवान अनंत रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं। इसका कारण यह है कि उनके भक्त उनकी सेवा करना चाहते हैं अलग अलग भावनाओं से, क्योंकि भक्तों की भावना अलग अलग होती है, शुद्ध प्रेम की होती है, लेकिन अलग अलग भावनाओं से वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ऐसे अलग अलग रूप धारण करते हैं, जैसे कि नरसिंह देव, मत्स्य देव, वराह देव, वामन देव इत्यादि। भगवान एक ही कार्य में अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। साथ साथ में भगवान के विभिन्न रूप धारण करने का उद्देश्य यह भी है कि यहां पृथ्वी लोक में या भौतिक जगत में जहां भी वो अवतार लेते हैं, वहां कोई विशेष कार्य संपन्न करने की आवश्यकता होती है, और उस कार्य संपन्न करने हेतु जो उपयुक्त रूप है वो धारण करते हैं। यह दूसरा कारण है कि भगवान विभिन्न रूप धारण करते हैं। उदाहरणार्थ, जब पृथ्वी लोक असुरों के बुरे कार्यों की वजह से नीचे गिर पड़ी अपने कक्षा से और गर्भोदक सागर में गई, तो ब्रह्मांड के निचले हिस्से से पृथ्वी को ऊपर लाने के लिए एक शुकर का रूप उपयुक्त था। एक शुकर जो होता है वो गंदी जगह में जाके अपने सूंड से, अपने नाक से सूंघ कर अलग अलग वस्तुओं को बाहर निकालता है, तो इसलिए यहां पर वराह देव का रूप उपयुक्त था। ठीक उसी तरह से प्रलय के समय जब सत्यव्रत राजा को बचाना था, तो भगवान ने मत्स्य देव का रूप धारण किया, क्योंकि जलचर प्राणी ही ऐसे प्रलय के जल में चल सकता है। इस तरह से अलग 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 हम अवतारों का अगर विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि भगवान ने जो रूप धारण किए उस परिस्थिति के लिए बिल्कुल ठीक थे। तो यह दूसरा कारण है, परंतु मुख्य कारण यह है कि भगवान के भक्तों के भाव जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब यह प्रश्न आ सकता है कि भक्तों के भाव ऐसे अलग अलग क्यों होते हैं? ऐसा क्यों है कि कोई भक्त भगवान को नरसिंह देव के रूप में पूजना चाहता है, कोई मत्स्य देव के रूप में, कोई श्याम सुंदर गोविंद के रूप में, कोई चतुर्भुज नारायण के रूप में? ऐसा क्यों है? बृहद भागवतामृत नाम के ग्रंथ में नारद मुनि गोप कुमार नाम के भक्त को उपदेश करते हैं। गोप कुमार वैसे बृहद भागवतामृत के नायक हैं, उनके पीछे सारी कथा बनी हुई है। तो नारद मुनि बताते हैं कि ये प्रश्न बहुत ही रहस्यमय है और इसके लिए कोई जवाब नहीं, कि अलग अलग भक्त अलग अलग भाव से भगवान की सेवा क्यों करना चाहते हैं, कोई इस भाव में, कोई उस भाव में। नारद मुनि कहते हैं कि इसके लिए कोई जवाब नहीं, ये हमारे समझ की बाहर है। हम ये जवाब दे सकते हैं कि ये जीव की स्वतंत्रता है, स्वेच्छा है। स्वेच्छा का यही मतलब होता है कि जीव अलग अलग तरह से अपनी पसंद को व्यक्त कर सकता है। व्यक्तित्व, अलग अलग व्यक्तित्व का मतलब ही यह है कि किसी को एक चीज पसंद है, किसी को दूसरी चीज पसंद है, किसी की ऐसी वृत्ति है, किसी की उस तरफ। हां, ऐसे बताया जा सकता है, परंतु एक जीव अपने स्वतंत्रता का, स्वेच्छा का उपयोग इस तरफ इस तरह क्यों करता है और उस तरह क्यों नहीं, उसको इसका उत्तर देना बहुत कठिन है। इसलिए नारद मुनि कहते हैं कि अलग अलग जीवों के अलग अलग भाव जो होते हैं वो क्यों हैं, उसका उत्तर देना बहुत कठिन है, नहीं दिया जा सकता। लेकिन खैर, जीव स्वतंत्र है इच्छा करने में, क्योंकि वो श्री कृष्ण का अंश है, और जीव के इच्छा अनुसार भगवान अलग अलग रूप लेते हैं। भगवान के धाम में तो भगवान के नित्य रूप निवास करते ही हैं, साथ साथ यह भौतिक जगत में भी भगवान के विभिन्न रूप अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग लोकों में, वर्षों में, द्वीपों में निवास करते हैं। जैसे यहां हम देख रहे हैं कि एक वर्ष में प्रहलाद महाराज, हरि वर्ष में प्रहलाद महाराज अपने अन्य पार्श्व भक्तों के साथ में नरसिंह देव की पूजा करते हैं, कहीं पर भगवान मत्स्य देव के रूप में हैं, और कहीं पर वो कामदेव के रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसे पिछले श्लोकों में हमने वर्णन सुन लिया है। तो भौतिक जगत में भी वो विभिन्न रूप प्रकट कर देते हैं। यहां इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि उत्तर कुरु वर्ष के निवासी कैसी प्रार्थना कर रहे हैं। इस श्लोक का सार ये है कि ये भक्त बता रहे हैं कि हे प्रभु, जिस तरह से पूर्व जमाने में ऋषि मुनि लकड़ी या काष्ठ को रगड़ के अपनी अग्नि उत्पन्न करते थे अपने यज्ञ आदि के लिए, उसी तरह से जो निपुण या जो दक्ष ऋषि होते हैं वो इस संसार के हरेक तत्व को रगड़ के आपको देख सकते हैं। मतलब प्रत्यक्ष रूप में रगड़ते नहीं है वो, लेकिन इस सारे सृष्टि में सब जगह कैसे भगवान हैं, हालांकि वो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, परंतु फिर भी सब जगह वो हैं, ऐसे ऋषि मुनि उनको देख सकते हैं। जैसे एक लकड़ी को देखा जाए तो इस लकड़ी के भीतर अग्नि है, लेकिन कैसे है हमें तब पता चलेगा जब हम अग्नि को, हम इन काष्ठों को रगड़ेंगे साथ में। जैसे जैसे रगड़ेंगे गर्मी उत्पन्न होगी, गर्मी की वजह से अंदर जो अग्नि है वो फिर बाहर प्रकट हो जाएगी। ठीक उसी तरह से भगवान सब जगह हैं, लेकिन जो बड़े बुद्धिमानी से, जो ज्ञान की दृष्टि से देखेगा, विश्लेषण करेगा, इस विश्लेषण के माध्यम से उसे पता चलेगा कि किस तरह से भगवान हर एक अणु में, हर एक कण कण में वो विद्यमान हैं। इसलिए वैदिक शास्त्रों का यही उद्देश्य है। यहां पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस शब्द का अर्थ ऐसे ही है कि वैदिक शास्त्रों से जो जाने जाते हैं, एको देवो सर्वभूतेषु गुरुः, वैदिक मंत्रों के जाप से ही श्री भगवान को जाना जा सकता है। वेदैश्च सर्वैर अहम् एव वेद्यः, शास्त्रों का उद्देश्य क्या है? वेदों को जानना। मंत्रों का जाप करने का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को जानना। यज्ञ आदि अनुष्ठानों को करने का उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण को जानना। मतलब इन चीजों में श्री कृष्ण हैं, और इन कार्यों को करने से श्री कृष्ण उत्पन्न होते हैं। जैसे कि दूध का मंथन करने से मक्खन निकलता है, मक्खन दूध का सार है। उसी तरह से वैदिक मंत्रों का जाप और उच्चारण करने से श्री कृष्ण, जो कि उन मंत्रों में निवास करते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं। वेदों का अध्ययन करने से हम श्री कृष्ण को नहीं जान पाएंगे तो हमारा वैदिक पठन वो व्यर्थ है। हमारे जाप से अगर श्री कृष्ण प्रकट नहीं हुए, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति हमारे मन में, हृदय में शुद्ध प्रेम प्रकट नहीं हुआ, तो ये सब कुछ व्यर्थ है। आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम्, नाराधितो यदि हरि तपसा ततः किम्, अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततः किम्, न अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततः किम्। शास्त्रों में बताया जाता है कि अगर हम आराधना करते हुए हम श्री हरि को नहीं देख पा रहे हैं तो हमारे तपस्या का फल क्या है, और अगर हम सब जगह हर समय हम भगवान की सेवा करते जा रहे हैं प्रेम से, तो फिर हमारी तपस्या की क्या आवश्यकता है। अगर हम अंतर और बाहर भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे तपस्या का क्या फायदा है। और अगर अंदर और बाहर हम भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं तो फिर तपस्या की आवश्यकता क्या है। कहने का मतलब है कि इन सारे चीजों को करने का उद्देश्य है भगवान का दर्शन करना, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना, चाहे वो वैदिक पाठ हो, वैदिक मंत्रों का जप हो, यज्ञ अनुष्ठान हो, तपस्या हो, कुछ भी हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो, वर्णाश्रम धर्म के पालन का पालन हो, इन सब का उद्देश्य है श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण पैदा करना। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेत् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि जो अलग अलग वर्ण और आश्रम है, वर्णाश्रम धर्म, इनके अलग अलग कर्तव्य, जिम्मेदारियां इत्यादि बताए गए हैं। इनका पालन करके अगर भगवान विश्वक्सेन या श्री कृष्ण के प्रति, इनके कथाओं के प्रति रति या आकर्षण जागृत न हो जाए तो फिर ये सारे अनुष्ठान, यज्ञ, जप, मंत्र पाठ इत्यादि श्रम एव हि केवलम्, केवल व्यर्थ का श्रम है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं इसका फल क्या होना चाहिए? कृष्ण प्रेम, नहीं तो वो व्यर्थ है। अब दामोदर लीला में, जिसको कि हम बार बार सुन चुके हैं, हम जानते हैं कि श्री कृष्ण ने किस तरह से माता यशोदा को स्नेह से, मात्र स्नेह में डुबा दिया। यशोदा माता स्तनपान करा रही थी श्री कृष्ण को, और अचानक उन्होंने देखा कि दूध उबल गया है, तो कृष्ण को छोड़कर वो जल्दी से वहां पर चली गई। और उधर कृष्ण नाराज हो गए, उन्होंने वहां जो मक्खन और दूध के जो पात्र थे, मटके थे, उनको तोड़ दिया और भाग गए वहां से। और माता यशोदा ने आकर कृष्ण का पीछा करके उनको बांध दिया, और यह है दामोदर लीला। लेकिन माता यशोदा उस समय श्री कृष्ण को दूध क्यों पिला रही थी? सबसे पहले जब श्री कृष्ण सोए हुए थे, निद्रा में थे, उस समय माता यशोदा दूध का मंथन कर रही थी। माता यशोदा के मन में चिंता थी कि मेरा बेटा सब जगह जाके मक्खन चोरी क्यों करता है? क्या हमारे घर में मक्खन मीठा नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है? बार बार मुझे शिकायत सुननी पड़ती है, अलग अलग गोपियां रोज आते हैं कि अरे तुम्हारे कृष्ण ने देखो क्या किया, मेरे घर में आके माखन चोरी किया, मेरे घर में आके इसका ये मटका तोड़ दिया। तो माता यशोदा खास आज बैठी, आज मैं मंथन करने वाली हूं, जो घर में जो दासियां हैं उनको नहीं दूंगी। ये दासियां भी तो आखिर श्रेष्ठ गोपियां हैं, ये भी तो कृष्ण के शुद्ध भक्त थी। लेकिन माता यशोदा ने सोचा कि शायद अगर आज मैं खुद अपने हाथों से दूध का मंथन करूंगी, उससे जो मक्खन या जो दही वगैरह निकलेगा वो मैं कृष्ण को खिलाऊंगी, अवश्य इसको चखने के बाद श्री कृष्ण और कहीं इसको चोरी करने के लिए नहीं जाएगा। तो माता यशोदा दूध का मंथन करते करते वो कृष्ण कथा करती जा रही थी, कृष्ण का गुणगान करती जा रही थी। ये वृंदावन के गोपियों का उनकी एक आदत थी, जब भी वो कुछ भी करते, अपने घर के कार्य करते, जैसे दूध का मंथन करना, जैसे रसोई करना, जैसे और भी कोई काम है घर के, उस समय वो कृष्ण का गुणगान किया करती थी। उसी तरह से हमें भी एक आदत बनानी चाहिए कि जब भी हम कुछ छोटे मोटे कार्य करते रहते हैं अपने घर में, अपने दफ्तर में, जहां भी, हमें मन ही मन या वाचक रूप में भी कृष्ण का गुणगान करते रहना चाहिए, या तो फिर हरे कृष्ण महामंत्र गुनगुनाना चाहिए। इस तरह से हमारी चेतना सदैव शुद्ध रहेगी। तो फिर माता यशोदा के गीत से और उनके आभूषणों के छनछन की आवाज से श्री कृष्ण अपने नींद से जाग गए। और जागा तो उन्होंने सोचा कि अरे मुझे तो भूख लगी है, और तुरंत उठ के माता यशोदा के पास चले आए। उन्होंने देखा कि माता यशोदा मंथन कर रही है दूध की और उसमें बिल्कुल मग्न है। कृष्ण ने सोचा मैं यहां खड़ा हूं और माता यशोदा देख भी नहीं रही मेरे ओर। माता यशोदा इतनी मग्न थी कृष्ण की सेवा में कि कृष्ण आए वहां उनको देख नहीं पाए। यह है भक्ति, यह हमारी सेवा करने की भावना। हमें इस तरह से सेवा करनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण की कि स्वयं श्री कृष्ण भी हमारे सामने आए हैं, हम देख नहीं पाए उनको। हमारे सेवा में हमको भगवान को देखना चाहिए। जो भी हम सेवा करते हैं उसमें ही भगवान विराजे हैं। भगवान की सेवा और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये भक्ति मार्ग है। आध्यात्मिक मार्ग में साधन और साध्य, इनमें अंतर नहीं होता। हमारा साध्य है कृष्ण प्रेम, साधन है कृष्ण के नाम का जप, लेकिन दोनों एक ही हैं। उस भौतिक जगत में साधन और साध्य में अंतर होता है। व्यक्ति व्यवसाय करता है पैसे कमाने के लिए, उसका साधन है व्यवसाय, साध्य है पैसा, दोनों अलग हैं। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भगवान की सेवा और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो बस हम भगवान के सानिध्य में हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसी तरह से माता यशोदा इतनी मग्न हो गई थी श्री कृष्ण की सेवा में कि उनको पता ही नहीं चला कि श्री कृष्ण वहां पास में आके खड़े हैं। तो श्री कृष्ण को गुस्सा आया तो उन्होंने माता यशोदा के हाथ पकड़ लिए और जो मंथन करने के लिए जो छड़ी थी, जो डंडा था, वो पकड़ लिया। श्री कृष्ण ये कहना चाहते थे कि बस अब मंथन करना बंद करो, क्योंकि मैं आया हूं, मैं यहां खड़ा हूं और मंथन कर रहे हूं, मुझे भूख लगी है, मुझे दूध चाहिए। तो यह पहला कारण है कि भगवान कृष्ण ने माता यशोदा के दूध का मंथन का कार्य रोक दिया। लेकिन एक और दूसरा कारण भी है जो वैष्णव आचार्य समझाते हैं, वो ये है कि श्री कृष्ण ने जो भी वेद शास्त्र बनाए हैं वो किस लिए बनाए हैं, ताकि इस भौतिक जगत के लोग इसको पढ़ लें और उनको जान लें, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करें। तो शास्त्रों का मंथन करके श्री कृष्ण बाहर निकलते हैं। जैसे क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया असुरों ने और देवताओं ने, वासुकी को सांप बनाया, मंदर पर्वत को बीच का डंडा बनाया और मंथन करते गए, और समुद्र मंथन से कितने सारे वस्तुएं उत्पन्न हुई, बहुत सारे, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। तो उसी तरह जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, पढ़कर उसको समझने का प्रयास करते हैं, उनका पाठ करते हैं, ये शास्त्रों के मंथन के बराबर है। तो उससे क्या उत्पन्न होना चाहिए, श्री कृष्ण, कृष्ण प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। तो माता यशोदा को कृष्ण तो प्राप्त हो चुके थे, तो उनको मंथन करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने सोचा कि चलो मंथन बंद करा दो। और फिर माता यशोदा आगे देखने लगी कि आगे कृष्ण क्या करने वाला है। फिर कृष्ण उनकी गोदी में चढ़े और फिर दूध पान करना आरंभ किया। इस तरह से हमें जानना है कि जो भी हम कार्य करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, भागवत को पढ़ते हैं, जाप करते हैं, इसका उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपने हर कार्य में कृष्ण को देखता है, अर्थात वो कृष्ण के लिए करता है, कृष्ण प्रेम से उत्पन्न हुए भावना से करता है, उसने अपने मनुष्य जीवन को सफल बना दिया है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो इस श्लोक में उत्तर कुरु वर्ष के निवासी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, जिस तरह से अरणि को रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होता है, उसी तरह से हम भी आपको सब जगह देखना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति के हृदय में, हर एक प्राणी के हृदय में, हर एक कण कण में, हर एक अणु में, वास्तव में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान श्री कृष्ण उपस्थित नहीं है। भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन चमत्कार की बात यह है, सर्वव्यापी होने के बाद भी उनका अस्तित्व का नाश नहीं होता है। भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानी न चाहम तेष्वस्थितः। वो कहते हैं कि मैं निराकार रूप में सब जगह फैल गया हूं, परंतु फिर भी न च अहम तेषु अवस्थितः, फिर भी मेरा व्यक्तित्व नष्ट नहीं होता। भगवत गीता का 9वां अध्याय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान श्री कृष्ण इस बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत का स्पष्टीकरण करते हैं कि हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण एक साधारण भौतिक चीज की तरह है। एक कागज को अगर आपने फाड़ लिया, जैसे कि मायावादी लोग कहते हैं, उसके अलग अलग टुकड़े कर दिए, तो फिर जो मूल जो कागज का टुकड़ा है वो रहेगा नहीं, क्योंकि उसके टुकड़े हो गए। तो ठीक उसी तरह से जब भगवान या परम सत्य के अलग अलग अंश हो जाते हैं तो फिर भगवान पूर्ण रहते नहीं है, ये मायावादियों का कथन है। लेकिन भगवान इस बात का खंडन करते हैं यहां, और भगवान कहते हैं कि ये नहीं सोचो कि मेरे बहुत सारे अंश हो गए तो मेरे व्यक्तित्व का नाश हो गया, कि मैं सब जगह फैला हुआ हूं इसका मतलब है कि मेरा व्यक्तित्व नष्ट हो गया। भगवान कहते हैं नहीं, मैं सब जगह हूं फिर भी मैं मेरे धाम गोलोक वृंदावन में मेरे व्यक्तित्व को बनाए रखा हूं, मैं सदैव एक व्यक्ति हूं, लेकिन फिर भी मैं सब जगह उपस्थित हूं। यह भगवान की अचिंत्य शक्ति है। अगर भगवान की अचिंत्य शक्ति को हम स्वीकार नहीं करेंगे तो भगवान को कभी नहीं समझ पाएंगे, ऐसा जीव गोस्वामी कहते हैं। भगवान को हम हमारी भौतिक बुद्धि से, सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। मायावादी लोग इसको तोड़ मोड़ कर अलग अलग सिद्धांत देते हैं। यहां पर श्रील प्रभुपाद जी विपश्चित शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। विपश्चित शब्द का अर्थ उन्होंने दिया है परम सत्य को सुनिश्चित करने में पटु। जो बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़े दार्शनिक कवि लोग होते हैं, परम सत्य को पहचान सकते हैं विश्लेषण करके। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, विपश्चित शब्द की व्याख्या तैतरीय उपनिषद में इस प्रकार दी गई है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमान सोष्णुते सर्वान कामान यह ब्रह्मणा विपश्चितेति। ब्रह्म की परिभाषा परम सत्य क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम। आपको याद है एकादशी के दिन पर एक दिन रामानुजाचार्य की कथा चल रही थी, इस श्लोक की चर्चा हुई थी, किसी को याद है? जब रामानुजाचार्य बालक ही थे और सबसे पहले उनके जो गुरु थे जिनका नाम था यादव प्रकाश, यादव प्रकाश के पास जाकर वो पढ़ते थे, और यादव प्रकाश शंकराचार्य के मायावादी सिद्धांत के ऊपर टीका देते थे, उपनिषदों का, वेदों का। और सबसे पहली बार जब रामानुजाचार्य का मतभेद यादव प्रकाश से हुआ, वो तैतरीय उपनिषद के इस श्लोक से हुआ। जब यादव प्रकाश ने यह श्लोक पढ़ा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो वो उसकी टीका करने लगे इस प्रकार से, कहने लगे कि यह कैसे हो सकता है कि जो निराकार ब्रह्म है इसके कोई गुण है, वैशिष्ट है, यह संभव नहीं है। अलग अलग विशेष गुण एक ही साथ ब्रह्म में निवास नहीं कर सकते। जैसे मानो कि अगर एक गाय है, गाय के सींग हैं, अगर हम कहेंगे कि गाय के सींग टूटे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम कहेंगे कि इसके सींग ही नहीं हैं, या हम कहेंगे कि इसके सींग पूरे हैं, दोनों सींग हैं पूरे हैं, क्या ये तीनों बातें एक साथ सत्य हो सकती हैं? नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से ये कैसे संभव है कि निराकार ब्रह्म में सत्य भी हो, ज्ञान भी हो, वो अनंत भी हो? ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब है कि निराकार ब्रह्म के कोई गुण नहीं है, कोई वैशिष्ट उसके नहीं है। तो रामानुजाचार्य जब सुना तो उनको पसंद नहीं आई ये बात। उन्होंने अपने गुरु को रोका और कहने लगे कि नहीं, जो आप व्याख्या दे रहे हैं वो सही नहीं है। यहां जो तैतरीय उपनिषद में बताया गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसका मतलब ये है कि ब्रह्म एक ही साथ में सत्य है, अनंत है और ज्ञान से पूर्ण है। इन तीनों में कोई विरोधाभास नहीं है। ये जो गाय का उदाहरण आपने दिया वो इसके लिए उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त उदाहरण ये होगा कि जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश और सूर्य की उष्णता दोनों एक साथ सूर्य से संबंधित हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सूर्य को एक साथ उष्णता और प्रकाश कैसे आए, दोनों एक साथ हैं। ठीक उसी प्रकार से परम सत्य ब्रह्म जो है उनमें अनंत गुण निवास करते हैं एक साथ, और इनमें कोई विरोधाभास नहीं है। रामानुजाचार्य ने इस तरह से एक लंबा प्रवचन ही दे दिया अपने गुरु को, विस्तार में इसकी व्याख्या की, और निर्वचन रह गए यादव प्रकाश। अंत में जब कुछ बोल नहीं पाए तो गुस्से होकर वो कहने लगे रामानुजाचार्य से, तुम और मुझे सिखाओगे? इसके बाद कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन उस दिन से यादव प्रकाश के मन में एक तरह की बेचैनी उत्पन्न हो गई, क्योंकि वो दुख देखने लगे कि ये जो मेरा शिष्य है दूसरों की तरह नहीं है। दूसरे जो शिष्य हैं जो मैं कहता हूं वो मान लेते हैं, लेकिन ये जो है मेरे साथ वाद करने वाला है, तर्क करता है, मेरी बातों को सुनता नहीं है, ये मेरे लिए एक खतरा है। और आगे चल के भी जब यादव प्रकाश ने शास्त्रों का गलत अर्थ बताया तो रामानुजाचार्य पीछे हटे नहीं, सही वैष्णव दृष्टि से इसका, इस सिद्धांत का प्राकट्य करने के लिए। तो खैर, इससे हम जान सकते हैं कि भगवान अनंत गुण संपन्न है। भगवान सदैव एक व्यक्ति है और व्यक्ति होते हुए भी वो सब जगह विराजे हैं। अगर अगर यही परम सत्य भगवान श्री हरि श्री कृष्ण का दर्शन हमको करना है, उनकी उपस्थिति देखना है सब जगह, तो हमें इस भक्ति पथ का आश्रय लेना है। भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना, श्रीमद् भागवत और गीता का नित्य श्रवण कथन अध्ययन करना, भगवान के अर्च्य विग्रह की सेवा करना, उनके प्रसाद का ग्रहण करना, उनके भक्तों की सेवा करना इत्यादि, ऐसा करके इस भावना से अगर हम करेंगे तो फिर जैसे अरणि के रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से हमारे साधना से भगवान प्रकट हो जाएंगे भगवान की कृपा से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। श्रीमद् श्रीमद्भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।
यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe. Jai Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jai Gaura Nitai.